नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार आगामी अंतरिम बजट में पीएलआई योजना का दायरा बढ़ा सकती है। डेलॉयट ने कहा कि इसमें कपड़ा, आभूषण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। इस समय उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना 14 क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर रजत वाही ने कहा कि ग्रामीण आय बढ़ाकर मुद्रास्फीति और उपभोग मांग में कमी से निपटा जा सकता है। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, आज हमारे पास पीएलआई योजना के तहत 14 क्षेत्र हैं, लेकिन इनमें से कई क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा नहीं करते हैं। चमड़ा, परिधान, हस्तशिल्प और आभूषण जैसे कई क्षेत्रों को पीएलआई योजना में लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार के अवसर तैयार करते हैं और इन्हें पीएलआई योजना के दायरे में लाने से कम आय वाले परिवारों के साथ ही शहरी लोगों को भी मदद मिलेगी। डेलॉयट ने अपने बजट अपेक्षाओं की रिपोर्ट में कहा कि सरकार से ग्रामीण परिवारों की आय में सतत वृद्धि के उपाय करने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य ने स्विट्जरलैंड के दावोस में WEF 2024 के दौरान 3,53,675 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शिंदे ने राज्य में वैश्विक उद्योगों के बढ़ते विश्वास के लिए निवेशकों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बुधवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि इस MOU से राज्य में 2,00,000 से अधिक नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। बयान में शिंदे के हवाले से कहा गया कि औद्योगिकीकरण, कुशल जनशक्ति और तेजी से फैसले करने पर जोर देने के साथ राज्य सरकार जनता की भलाई पर जोर दे रही है। दावोस विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन के पहले दिन 6 उद्योगों के साथ 1,02,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए। दूसरे दिन 17 जनवरी को 8 उद्योगों के साथ 2,08,850 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 जनवरी को 6 उद्योगों के साथ 42,825 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रमुख शेयर सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी रही। कारोबारियों का कहना है कि हालिया रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफा वसूली के चलते बाजार में कमजोरी है। इसके अलावा विदेशी कोषों की ताज़ा बिकवाली ने भी निवेशकों की भावना को खराब किया। इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 561.05 अंक गिरकर 70,939.71 पर पहुंच गया। निफ्टी 165.6 अंक टूटकर 21,406.35 पर था। सेंसेक्स मंगलवार को 73,427.59 के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इस दिन निफ्टी ने भी 22,124.15 के अपने उच्चतम स्तर को छुआ। इस तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सेंसेक्स की कंपनियों में पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, विप्रो, HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज, इंडसइंड बैंक, NTPC और JSW स्टील में उल्लेखनीय गिरावट हुई। दूसरी ओर एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को शुद्ध रूप से 10,578.13 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। सेंसेक्स बुधवार को 1,628.01 अंक या 2.23% गिरकर 71,500.76 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 460.35 अंक या 2.09% गिरकर 21,571.95 पर बंद हुआ। बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज स्टॉक HDFC बैंक में तिमाही नतीजों के बाद गिरावट आज लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आज बैंक का शेयर करीब 3% टूटकर 1480 रुपये के भाव तक कमज़ोर हुआ। 17 और 18 जनवरी दो दिनों में देखे तो स्टॉक में करीब 10% की गिरावट आई है। 17 जनवरी को बैंक का शेयर करीब 8% टूटकर 1536 रुपये पर बंद हुआ था। बैंक ने मंगलवार को अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे जो बाजार के अनुमान से कमज़ोर थे, जिसके बाद से बैंक स्टॉक में बिकवाली देखने को मिल रही है। इसका असर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केट पर भी दिख रहा है। HDFC बैंक ने बुधवार को 8% गिरावट रही थी, जो बीते 3 साल में सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट थी। निफ्टी 50 इंडेक्स में स्टॉक का वेटेज करीब 14% है, जिसके चलते बाजार पर इसका असर पड़ रहा है। बुधवार को निफ्टी बैंक में करीब 3.5% और निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स में करीब 3.5% गिरावट रही थी। आज भी बैंक निफ्टी फीसदी कमज़ोर हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024 की दिसंबर तिमाही में प्राइवेट सेक्टर में देश के सबसे बड़े लेंडर HDFC बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM में फंड के अधिक लागत के चलते कमी आई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।